मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये स्वागत करने का मौका मुझे दो दिन के गैप के बाद मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने अपने इन दो दिनों को बहुत एंजॉय किया होगा और अपने अपने हिसाब से इसे उपयोगी भी बनाया होगा। मित्रों, इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट था कि जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है उनके क्वेश्चंस की मैंने चर्चा की थी और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है कि प्रश्न कैसे लिखे जाने चाहिए और इस पर्टिकुलर प्रश्न को आप कैसे समझेंगे, इसके कौन कौन से भाग बन रहे हैं, इसका शेड क्या है और आप अकॉर्डिंग टू शेड यानी कि जो एग्जामिनर की जरूरत है उसके हिसाब से आप अपने उत्तर को कैसे मोड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने ईमेल को चेक कर लें और इस स्पेशल ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने। और आप लोगों को मालूम होगा कि इससे पहले जो दो स्पेशल ऑडियो आपके पास भेजे गए थे वो जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड थे। मित्रों, मैं एक बात आप लोगों से और जानना चाह रहा हूं जो मुझे अभी तक जिसके बारे में कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा है और वो ये कि पिछले कुछ समय से मैंने आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन देना शुरू किया था। सप्ताह में मैं एक क्वेश्चन देता हूं, खासकर वो क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके मैं तैयार करता हूं कि शायद इसके पूछे जाने की संभावना अधिक हो। और वो क्वेश्चन इस पर्पज से दिया जाता है कि आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं और यदि देख भी रहे हैं तो उस पर अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सच पूछे तो मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आप सबके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इसके बारे में मुझे बताएं अगर आपको लगता है कि इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए, मतलब आपके कुछ काम का होना चाहिए, कंटिन्यूटी की बात नहीं है। और यदि वो चीज आपके काम की नहीं है तो इसे बंद किया जा सकता है, या आप और कुछ चाहते हैं तो फिर मुझे वो बताएं ताकि मैं अपने कम से कम इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के हर वक्त को आपके लिए उपयोगी बना सकूं। फ्रेंड्स, तो अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो लाइफ मैनेजमेंट का पॉइंट है। मेरे पास इस बीच में जो कुछ काफी मेल्स आए हैं उसमें से दो मेल्स की मैं चर्चा यहां कर रहा हूं मित्रों, बिना उनका नाम लिए। एक मेल्स फीमेल का है, किसी में महिला का है और जो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि सर, आप कहते हैं कि हर समय बदलाव होता रहता है लेकिन मैं तो कह सकती हूं कि मेरी जिंदगी में पिछले 3 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल एक ठहराव जैसी स्थिति है, तो मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। एक मेल मेरे पास और आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो ये बातें बताते हैं ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मैंने लागू की और मेरे लिए संभव नहीं हो सका, इस तरीके की बातें हैं। मित्रों, बिल्कुल आप दोनों ने जो अपने थॉट्स शेयर किए हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। 3 साल में आपको कोई ठहराव महसूस नहीं हुआ और मैंने जो कुछ भी तरीके बताए, चाहे मन को समझने का, दिमाग को मजबूत बनाने का, अपने दिमाग के रिसोर्सेस को, उसके रूट को समझने का, उसे डाइवर्ट करने का, वो आपने अप्लाई किया और आपको उसमें सफलता नहीं मिली। मित्रों, इनके जवाब में मैं अब थोड़ी सी एक अलग बात करना चाहूंगा, संबंध इनके जवाब से ही है। डेफिनेटली आप लोगों ने तलवार फिल्म देखी होगी, बीच में एक स्टूडेंट ने तलवार फिल्म की बात भी की थी और पिछले वीक मैंने वायदा भी किया था कि मैं तलवार फिल्म की चर्चा कभी न कभी करूंगा और आज इसी संदर्भ में चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैंने भी तलवार फिल्म देखी, हम सब ने देखी। एक बात जिसने सच पूछिए तो मुझे हिला कर रख दिया, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, जिससे सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गया। मुझे नहीं मालूम कि वो आपकी पकड़ में आया या नहीं आया, या पकड़ में अगर आया भी हो तो आप अंदर से हिले या नहीं हिले, और यदि हिले तो कितना हिले, लेकिन मैं बिल्कुल इतना हिल गया कि सच पूछिए कि उस फिल्म को आगे देखना मेरे लिए उस तरीके से संभव नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मेरी सारी सोच केवल वहीं पर जाकर टिक गई। हालांकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मुझे ये विचार या ये थॉट्स मालूम थे, दिमाग इस तरीके से काम करता है मुझे ये भी मालूम था, लेकिन इतनी बड़ी चीज और यूं छूट जाएगी और मुझसे छूट जाएगी, मतलब ये नहीं कि मैं कोई बड़ा तोपचंद हूं, लेकिन यह है कि फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस चीज को भी करूं थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे करके करूं, भले ही मैं थोड़ी सी चीजें क्यों ना करूं, हो जाएगा मुझसे भी ऐसा हो जाएगा। मैं कांप गया दोस्तों और यही सोचकर मैं हिल गया। आपको ध्यान होगा, चलिए हम प्रसंग पर नहीं जाते, उसमें एक डायलॉग है और डायलॉग यह है कि लोग जब उस न्याय की प्रतीक देवी को देखते हैं तो उनको केवल दो चीजें दिखाई देती हैं, एक उनकी आंख पर बंधी हुई पट्टी और दूसरा एक हाथ में लिया हुआ तराजू। उनके दूसरे हाथ में जो तलवार है वो लोगों को दिखाई नहीं देती। मित्रों ये सुनना था, मुझे लगा कि जैसे सच में किसी ने एक वैचारिक तलवार का जबरदस्त वार मेरे सिर पर कर दिया हो। वास्तव में ऐसा कम से कम मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ही था। यदि जनरल नॉलेज में कोई मुझसे पूछ देता कि जो न्याय की देवी है उनके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में क्या है, तो कम से कम मैं तो उसका जवाब नहीं दे पाता। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग या सभी जवाब दे देते हों, लेकिन मुझे यह भी लगता है मित्रों कि यदि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे जैसे और भी कुछ लोग होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी वो न्याय की देवी जो इतनी स्पष्ट है, बड़ी है, कोई बहुत छोटी सी नहीं है, कोई मिनिएचर पेंटिंग नहीं है वो मधुबनी की, जहां आपको छोटी छोटी चीजें ढूंढनी पड़े और आपको पूछ दिया जाए कि उसमें कितने बिंदु हैं और आप ना बता सके क्योंकि आपने गिने नहीं थे, गिने क्या, देखे ही नहीं थे, ध्यान में ही नहीं आए थे। लेकिन न्याय की इतनी स्पष्ट, इतनी साकार भौतिक देवी जिनके एक हाथ में तराजू है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन दूसरे हाथ पर अच्छी खासी बड़ी तलवार है, जमीन को छूती हुई लंबी तलवार है, वो दिखाई नहीं दी। दिमाग ने ऐसा क्या किया, दिमाग ने ये छल क्यों किया, दिमाग ने या कह लीजिए कि आंखों ने इस तरीके से मुझे भ्रम में क्यों डाला। जब मित्रों मैं इसका विश्लेषण करने बैठा, क्योंकि इसका विश्लेषण तो मुझे करना ही था क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक थी, छोटी मोटी चूक नहीं थी, तो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से इसका कारण कम से कम अपने बारे में तो समझ में आ ही गया है। आप लोग भी अपने बारे में समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों यही आत्म साक्षात्कार है, यही अपने आप को जानना है, यही अपने आप को समझना है और यही वह शुरुआत है जहां हम अपने को जानकर, अपने को समझकर और अपने को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। यहीं से होगी, सीधे नहीं होगी। मैं बड़े आराम से समझ गया। होता यह है या मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपने ही बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कमजोरी को मैं आप सबकी कमजोरी कैसे बना सकता हूं, यह मेरी अपनी कमजोरी है। मित्रों हुआ यह मेरे साथ कि जब भी हम न्याय की देवी के बारे में पढ़ते हैं, कहीं चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तो हमेशा ये बात हमारे दिमाग में रहती है या हम यही बात, इन्हीं बातों की तरफ ही ध्यान ले जाते हैं कि उनकी आंख में पट्टी बंधी हुई है और दूसरे हाथ में तराजू है। बस एक और हाथ है जिसमें तलवार है, ये न तो हमने कहीं पढ़ा न कहीं सुना और हम देख जरूर रहे हैं। अब हो ये रहा होगा कि चूंकि हमारे दिमाग में न्याय की देवी के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमेशा जो इमेज इमर्ज हो रही है वो आंखों पर बंधी हुई पट्टी और एक हाथ में तराजू, बस। तो ये दोनों जो बिंब हैं, जो इमेजेस हैं, हमारे दिमाग पर इतने जबरदस्त रूप से चस्पा हैं कि अब हमारी आंखें इससे इतर कुछ देख ही नहीं पा रही हैं। और यदि हमारी आंखों ने उस तलवार को देखा भी होगा, देखा तो होगा ही क्योंकि आंख इतनी ज्यादा फोकस्ड होकर के तो काम करती नहीं है, आंखों ने उस तलवार को देखा है लेकिन हमारे दिमाग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, दिमाग ने उसकी उपेक्षा कर दी। और उसकी उपेक्षा करने का कारण यह था कि उसके सामने दो ऐसे टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल के लोग थे या तथ्य थे जैसे होता है ना कि जहां प्रधानमंत्री जी आ जाएं, राष्ट्रपति जी आ जाएं, वहां फिर छोटे छोटे लोगों की क्या औकात रह जाएगी। तो यहां इसी तरह से ये जो आंखों की पट्टी और तराजू, इतने ज्यादा हाई लेवल के लोग हो गए, इस प्रोटोकॉल में इतने टॉप मोस्ट पर हो गए, उस तलवार की कोई वक्त ही नहीं रह गई और दिमाग ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया दिमाग ने। मित्रों, मैंने ये एक आपको छोटी सी घटना बताई और ये घटना छोटी है लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं, बहुत व्यापक हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही हूं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कारण है कि हमसे इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं और जब परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में खासकर, तो हम भटक जाते हैं? क्योंकि उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम पढ़ रहे थे, जब उसको याद कर रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि कोई दूसरा थॉट्स बड़े प्रोमिनेंटली हमारे दिमाग में मौजूद हो और उसने दूसरे को जमने ही नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अब इस घटना को आप सब अपने अपने ऊपर तो लागू करके देखें ही, लेकिन मैं अब उन दोनों मेल जो मेरे पास आए थे, जिसकी चर्चा मैंने इसकी बिल्कुल शुरुआत में की है कि मुझ में बदलाव नहीं हुआ है और दूसरा यह कि मुझ में परिवर्तन नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होता है या बदलाव नहीं हुआ है, दोनों एक ही है, इसको जोड़ करके देखें। जब आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको बहुत से तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे, इस तरीके से स्पष्ट होंगे कि जिस बदलाव को आप देख नहीं पा रहे हैं वो कौन से बदलाव हैं। होता यह है कि जब हम अपने बदलावों की बात करते हैं, हम अपने परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजों को लेकर के चलते हैं, उसमें जो छोटी छोटी जो बारीक चीजें हैं वो उसी तरह से छूट जाती हैं जैसे कि आंखों की पट्टी और हाथ के तराजू के सामने तलवार छूट गई। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल में कोई बदलाव न हो? अगर मान लीजिए कि मैं एक रूटीन की जिंदगी जी रहा हूं, तो क्या यह रूटीन की जिंदगी ही मेरी जिंदगी की संपूर्णता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? मान लीजिए कि मेरा बेटा 3 साल पहले 6 महीने का था, तो क्या अब वो 3.5 साल का नहीं हो गया है? पहले वो बोल नहीं पाता था, बोलता भी तो तुतलाता था, क्या अब वो ज्यादा बोल नहीं रहा है? क्या वो ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो गया? क्या उसकी शैतानियां नहीं बढ़ गई हैं? तो जब उसकी शैतानियां बढ़ी हैं तो क्या मेरा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं बदल गया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बदलाव न हुआ हो? दूसरी बात मित्रों, कि उससे कोई फायदा नहीं होता या हुआ, हो सकता है कि आपने ठीक से लागू नहीं किया हो, इंप्लीमेंट नहीं किया हो, या अगर ठीक से इंप्लीमेंट भी कर लिया हो तो आप बहुत जल्दबाजी में हो, उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता है, या यह भी हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाना शुरू किया और वहीं आपने स्टॉप कर दिया, या थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेते तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगते। और यह भी होता है मित्रों कि जो चीज में मुझ पर लागू नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो फालतू की चीज है, वो दूसरों पर लागू होगी। एक मेडिसिन जो एक पेशेंट पर काम नहीं करती है, डॉक्टर उसकी दवाई बदल देता है, लेकिन वही दवाई दूसरे पेशेंट पर काम करती है, क्योंकि दवाइयों का उत्पादन तो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसको बेकार सिद्ध न कर दिया जाए। तो मित्रों, ये सब वो डाइमेंशंस हैं दिमाग के, है ना। मैं इस रूप में ये बातें बताना चाह रहा हूं कि जब हम किसी परिवर्तन को पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसको आपको मल्टी डाइमेंशनल तरीके से देखना होगा, बहुआयामी तरीके से उसके बारे में सोचना होगा, तब आपको वो चीजें पकड़ में आएंगी। मित्रों, ये दिमाग बहुत बहुत अद्भुत है, जो ये देखता है वही सच नहीं होता। और याद रखिए कि ये भी नहीं होता कि जो उसने नहीं देखा है वो ही सच हो या सच नहीं हो। ये सारे की सारी चीजें हमारी पूर्व धारणाओं पर, परसेप्शन पर, पूर्वाग्रह पर, दुराग्रह पर, थॉट्स पर, एप्टीट्यूड पर, एटीट्यूड पर, वैल्यूज पर, एथिक्स पर, सोसाइटी पर, जीवन के ऑब्जेक्टिव्स पर, पता नहीं कितनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कल्पना करके देखिए कि इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं और इन सारी चीजों के अलग अलग अनुपातों के आधार पर आप लाखों चीजों का निर्माण कर सकते हैं, लाखों रूपों का निर्माण कर सकते हैं, दिमाग को पकड़ना उतना आसान नहीं है। मैं ये बात मित्रों इसलिए कह रहा हूं कि आप इसके जाल में मत फंसिए। अपने ऊपर अगर आपको ये लागू कर रहे हैं चीजों को और वो लागू नहीं हो रही है तो ये भी मत समझिए कि अब ये लागू हो ही नहीं सकती है। दिमाग को समझिए। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं उसके दूसरे हाथ में तलवार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तलवार नहीं है, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, जाकर के इसको वेरीफाई करना चाहिए और फिर अपनी धारणाओं को बनाना चाहिए। तो मित्रों ये मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट में आपसे आप लोगों से छोटी सी चर्चा की है। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR की न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब अपने अपने इंपॉर्टेंट खबर का फैसला कर लें, निश्चित कर लें कि आप किसको मानेंगे और इसके बाद फिर मेरी बात सुने। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है मित्रों, या कह लीजिए कि एकमात्र जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है नेपाल में नए प्रधानमंत्री का चयन। आपको ध्यान होगा कि नेपाल में जब से संविधान लागू हुआ है तब से लगातार मैं नेपाल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि नेपाल भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण देश है। नेपाल है, नेपाल श्रीलंका है, नो डाउट पाकिस्तान अफगानिस्तान तो हमारे पड़ोसी हैं, कुछ सीमा तक मालदीव भी बिल्कुल हमारा पड़ोसी, केरल से तो लगभग 40-45 किलोमीटर की समुद्री दूरी ही हमारी मालदीव से बनती है। वर्मा ये आसपास के हमारे जितने भी देश हैं हमारे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण देश है, चाहे वो छोटे ही बिल्कुल क्यों ना हो। चाइना तो बहुत बड़ा देश है, नेपाल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और खासकर जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हमें अपने विदेश नीति में जो एक झुकाव या परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत तो पड़ोसी देश छोटे राष्ट्र हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। मित्रों तो वहां जो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है खड़ग प्रसाद ओली, और इनका प्रधानमंत्री बनना कैसे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों आपको मालूम है कि संविधान लागू होने के बाद से लगातार नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन के कारण भी अब आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे कि वहां एक समुदाय है जो मधेशिया कहलाते हैं, वो बेसिकली भारत के समर्थक होते हैं। लगभग 1.25 करोड़ उनकी आबादी है और इसमें से बहुतों को नए संविधान के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी, और जिन्हें नागरिकता मिल भी जाएगी वो वहां के किसी संवैधानिक पद हासिल नहीं कर सकेंगे, ये संविधान में है, जिसके विरोध में लगातार मधेशिया आंदोलन कर रहे हैं। आपको वो सारी चीजें मालूम है। आपको ये भी मालूम है फ्रेंड्स कि नेपाल में अगर हम देखें तो दो राष्ट्र अपनी अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं, एक भारत है दूसरा चाइना है। भारत तो शुरू से नेपाल का, या कह लीजिए नेपाल भारत का एकदम दोनों के बीच में बड़ी जबरदस्त सांस्कृतिक संबंध रहा है। रोटी बेटी के संबंध तक की बात हमारे प्रवक्ता तक ने कही, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, तो बड़े निकट के संबंध रहे हैं। और इससे पहले तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर होने से पहले तो नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र ही मानकर चलता था, वो घोषित हिंदू राष्ट्र था। दूसरी तरफ चाइना है। आप देखेंगे कि दोनों के मैप में देखिए तो उनकी सीमाओं से आपको पता लग जाएगा कि चाइना वहां क्यों कोशिश कर रहा है। नो डाउट नेपाल में भी काफी समय से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका काफी जोर बोलबाला था, और उसी ने कह लीजिए कि एक तरह से भारत और नेपाल के संबंधों में एक चुनौती पेश की थी। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां उस विचारधारा की जो पार्टियां हैं, ये सब के सब बट नेचुरल है कि चाइना से जो भी है सजेशन लेना है, उसके निर्देश पर काम करना है, उसके हित के लिए काम करना है, कुछ ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी। अब ये जो ओली जो प्रधानमंत्री बने हैं इनको 14 दलों का जो समर्थन मिला है, जिनके समर्थन से ये प्रधानमंत्री बने हैं, उन सब का रुझान चीन की तरफ ज्यादा है। वो सब चीन समर्थक हैं, जैसे श्रीलंका के पहले जो इससे राष्ट्रपति थे वो चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे। तो दोस्तों अब स्वाभाविक बात है कि अब जबकि ओली प्रधानमंत्री बन गए हैं और ऐसी पार्टियों के समर्थन से बने हैं, तो अब नेपाल में कम्युनिस्ट जो पावर्स ताकतें हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगी, और अब वो अपने यहां की जो भी नीति नियम बनाएंगी वो चीन के समर्थन में होगा, या कह लीजिए चीन के तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, वो चीन के और ज्यादा निकट जाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक नई चुनौती वहां दिखाई दे रही है। तो मित्रों ये जो संबंधों में एक ट्विस्ट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको नजर रखनी होगी। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सैटरडे को जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जो 200 शब्दों में लिखना है, वो खासकर भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर ही है। फ्रेंड्स, अब दूसरी जो खबर थी उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं थी, लेकिन एक इवेंट है। इस इवेंट के पीछे, इस न्यूज के पीछे एक व्यूज दिखाई देता है, वो ये है कि साहित्य अकेडमी, आप देख रहे थे कि लगातार जो साहित्य अकेडमी अवार्डी जो हमारे साहित्यकार हैं वो अवार्ड लौटा रहे थे, और खासकर वो ये मानकर लौटा रहे थे कि देश में जो असहिष्णुता का माहौल बन रहा है, जो साहित्यकार हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, देश में एक तरह से सांप्रदायिक, जातिगत, धार्मिक तनाव फैल रहा है, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने, इन चीजों के विरोध में आप कह लीजिए कि अवार्ड लौटाए हैं। ऐसा पहले भी होता था, यानी कि पहली बार हुआ है। आपको याद होगा कि फ्रीडम मूवमेंट के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अवार्ड लौटाया, आपके हमारे महात्मा गांधी जी ने अपना केसरी का वो वापस किया, और खासकर इमरजेंसी के समय में एक हमारे फणीश्वरनाथ रेणु थे, उन्होंने अपना पद्मभूषण ही था शायद, वो अवार्ड वापस किया। तो विरोध में ऐसे कदम उठाए जाते हैं, तो यहां भी ऐसा हो रहा है। इससे क्या होता है कि एक प्रेशर बनता है समाज में, एक चेतना जागृत होती है कि नहीं नहीं देखिए ये गलत हो रहा है या इसे ठीक किया जाना चाहिए, या कह लीजिए कि जो एक प्रवृत्ति उभर रही है उस पर थोड़ा सा दबाव बनता है। ये सब चीजें अप्रत्यक्ष होती हैं, बहुत साफ तौर पर दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपना काम मित्रों करती है। इसके बाद जब ये सब चीजें काफी संख्या में बढ़ होने लगी तो साहित्य अकेडमी ने फिर एक स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट जारी करके बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जो साहित्य अकेडमी है वो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, वो सेकुलर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से सम्मान करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो पूरी तरीके से मानता है। कोई भी सत्ता, कोई भी तंत्र, कोई भी समूह यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण करता है, उसे प्रतिबंधित करता है, तो एकेडमी उसके पक्ष में नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो ये एक घटना है, और मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि ये जो बात शुरू हो रही है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण शेप लेगी। इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बेहतर होगा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं, छुटपुट घटनाएं नहीं, उनको अगर आप नोट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर आपके पास अच्छा सारा, बड़ा मजबूत और कंटेम्प्रेरी, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। मित्रों, एक और भी जो न्यूज थी, हालांकि उसमें सीधे सीधे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको, कभी कभी आपने सुना होगा कि मैं न्यूज को सुनने के तरीके बताता हूं, तो एक और आपको न्यूज सुनने का तरीका बताता हूं, और वो था कि बिहार में आपको मालूम है कि आज मतदान हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। तो इस न्यूज को जब आपने सुना होगा तो आपने ये भी डेफिनेटली सुना ही होगा कि मतदान अच्छे से हो, शांतिपूर्वक हो, निष्पक्ष तरीके से हो, उसके लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आपको बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उसमें सुनने को मिली होंगी, इंटरेस्टिंग तैयारियां सुनने को मिली होंगी, जैसे कि जो दूर दराज वाले इलाके हैं वहां कैमरे लगाए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग है कि जो मतदान हो रहा है उसके आसपास के एरिया में सारी चीजें उस कैमरे में कैद होती रहेंगी। फिर आपने ये भी सुना है कि जो गंगा नदी है उसमें कमांडो जो है नाव में लगातार एक तरह से विजिलेंट रहेंगे, घूमते रहेंगे ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो तुरंत वहां पहुंच सके। आपने ये भी उसमें सुना कि कुछ हेलीकॉप्टर उस एरिया में उड़ते रहेंगे जिसमें कमांडो रहेंगे, और जहां भी उनको खबर मिलेगी वहां हेलीकॉप्टर से वो तुरंत पहुंच करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपने देखा कि कुछ एम्बुलेंस तैयार की गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। मित्रों, ये बात मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि हालांकि ये खबर तो बिहार चुनाव के संदर्भ में थी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में भी उपयोगी हो सकती है, या फिर क्या आपको नहीं लगता है कि आपदा प्रबंधन के मामले में भी ये कुछ उपयोगी हो सकती है? क्योंकि ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, और कभी कभी यदि पूछा जाए आपसे कि एक केस स्टडी जैसा दे दिया जाए कि ये सिचुएशन है, इसके लिए आप एज ए डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में, कलेक्टर के रूप में क्या पूर्व व्यवस्थाएं करेंगे, तो आपको यहां से कुछ चीजें मिल सकती हैं। अदरवाइज देखिए, चूंकि ये तो बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, हमारे दिमाग में आती नहीं है कि ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे हेलीकॉप्टर में कमांडो बैठा करके उसको इधर उस पूरे के पूरे एरिया में उड़ाना, तो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती। क्योंकि हमने अभी किया नहीं है, ना किसी ने सजेस्ट किया है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं यार ये काम तो किया जा सकता है, और फिर वो हमारे दिमाग में मौजूद रहती है, तो परीक्षा में हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, फिर आखिरी सूचना न्यूज में ये थी कि पब्लिक स्पीक के अंतर्गत इंद्रधनुष पर सब्जेक्ट को चुना गया है, जिसमें 7 टीकों की बात कही गई है, तो मैं समझता हूं कि इसे सुनना आप सबके लिए उपयोगी होगा, और यदि आप लोग समय निकाल सके तो इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का प्रोग्राम है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, टीकाकरण से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जिसका सीधे सीधे हेल्थ से रिलेशन है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के न्यूज क्लिपिंग्स पर। 2-3 क्लिपिंग्स आज बहुत अच्छी क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स। एक क्लिपिंग है ये बिजनेस स्टैंडर्ड की, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, जो एक्ट बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, फिर नियम कानून बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। चूंकि ये हिंदी में है इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे जरूर इसकी कर दूं। कुछ समय पहले ये एक सवाल उठा था कि लगातार न्यायालय में याचिकाओं के और केसेस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार न्यायालय पर काम का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह गिनाया जाने लगा कि सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, वो उतने स्पष्ट नहीं है, या तो वो बहुत उलझाव वाले हैं, या कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, या बहुत स्पष्ट नहीं है। तो नतीजा यह होता है कि इस अस्पष्टता का, उलझाव का, या विरोधाभास का फायदा उठा करके लोग केस दायर कर देते हैं, और न्यायालय को यह लगता है कि इसमें मामला तो सच में बनता है, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नतीजा यह होता है कि फिर वो न्यायालय पर बोझ बढ़ जाता है। तो एक सजेशन यह है कि न्यायालय के काम को कैसे कम किया जाए, कि उसका सजेशन यह था कि हमारे जो कानून बनते हैं वो बहुत स्पष्ट हों, ठोस हों, और बिना किसी उलझाव के हो, यह सजेशन आया था। तो मुझे लगता है कि उसी के संदर्भ में बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह लेख लिखा है। लेख के फॉर्म में नहीं है, यह एक स्टोरी के फॉर्म में है। इसमें इन्होंने बताया है, मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं, कि जो कानून बनाने का जो मूलतः जो काम होता है, वो प्रशासनिक मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर करते हैं। मित्रों, मैं क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के, उनको ध्यान होगा कि मैंने पूरे के पूरे सरकारी तंत्र का स्वरूप बताते हुए उनसे कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कहां पर होता है, वो याद करने की कोशिश करें। और सच पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि सेक्रेटरीज के पास दूसरे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, मिनिस्टर्स से जुड़े और देश विदेश के मामले होते हैं। तो रियल जो काम अपने अपने डिपार्टमेंट के अपनी अपनी शाखाओं का करते हैं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी करते हैं, और वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स में तो होते हैं, सीनियर मोस्ट तो नहीं होते। जहां भारत सरकार में आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए यदि आप सीधे आईएएस से आप एंटर करते हैं, तो आपको लगभग 19-20 साल लग जाते हैं, ये आप उसकी सीनियरिटी का अंदाजा इससे लगा ले सकते हैं। तो वो इस काम को करते हैं, ये लेख में लिखा हुआ है। अब इन्होंने बताया कि फिर वो अच्छे से कर क्यों नहीं पाते हैं, तो इसमें इन्होंने कुछ रीजंस गिनाए हैं कि उसको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जरूरी नहीं है कि बहुत योग्य अफसर ही उस लेवल पर पहुंचें। फिर उन्होंने ये भी दिया कि कभी कभी सरकार बहुत जल्दबाजी में कहती है कि नहीं नहीं हमें जल्दी से ही हमें ये कानून बनाना है, आप दीजिए। फिर ये भी होता है कि उनके ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं, इतनी डिमांड होती है, ये कुछ मांग रहा है, ये कुछ मांग रहा है, ये कुछ कह रहा है, और उन सबको समेट करके, उन सबको खुश करके कानून बनाना पड़ता है, तो वहां फिर इस तरीके की फिर गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखिए, जब एक मंत्रालय कानून बनाता है तो वो फिर अलग अलग जो उससे जुड़े हुए जो दूसरे मंत्रालय हैं उनके पास भी ओपिनियन के लिए भेजा जाता है कि भैया आप पढ़ लीजिए, ठीक ठाक तो बना है। उनको पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, कहते हैं कि फट से आप भी जल्दी से जल्दी भेजिए। इसमें यह भी एक कारण बताया गया कि पहले अध्यादेश लागू कर दिया जाता है, फिर अध्यादेश के हिसाब से फिर कानून बनाया जाता है, और चूंकि वो फट से बनाना होता है तो फिर से वो टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस इसमें गिनाए हैं जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत ठोस कानून हम लोग नहीं बना पाते। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस छोटे सी ही स्टोरी में आप देखेंगे कि इन सारी चीजों को बड़े प्रैक्टिकल तौर पर इन्होंने समेटा है। ये केवल आपके पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए ही जरूरी नहीं है, जनरल स्टडीज के लिए ही इंपॉर्टेंट लेख नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका सब्जेक्ट है ऑप्शनल का, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जानने को मिल सकते हैं। इसमें संसद की स्थायी समितियों की बात है, उनका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें उन्हें इसमें पता लग जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर पढ़ें, इसे बिल्कुल मिस ना करें। फ्रेंड्स दूसरा जो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो आधार कार्ड पर एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, दैनिक भास्कर का है ये। इसमें इन्होंने ये चीज दिया कि जो हमारा जो बायोमेट्रिक डाटा होता है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डाटा लेते हैं ना, बायोमेट्रिक डाटा क्या, उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली का फोटो की फोटो, इसमें इन्होंने दिया कि उसकी निजी संपत्ति है। यही कोर्ट ने सबसे ज्यादा पकड़ा है, निजी संपत्ति है, और जब तक इस डेटा की सुरक्षा की गारंटी न हो इसकी, तब तक सच पूछिए तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, मतलब दिया ही नहीं जाना चाहिए। तो सरकार पहले इंश्योर करे कि जो उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली की जो फोटो ले रहा है सरकार, जो ले रही है वो बहुत ही सुरक्षित रहेगी। तो ये एक आधार कार्ड को लेकर के एक अच्छा आर्टिकल है, आप लोग इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं जो दूसरे आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सब आप देख लेंगे, कुछ में मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, उसकी डिटेल में जाना एक कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप सब काफी कुछ मैच्योर हो गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए ये है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बस ये आपकी समझ में आ जाए तो बाकी काम आप खुद ही अपने आप कर लेंगे, और एक समय तो ऐसा आएगा जब ये सारे काम आपको खुद ही करने होंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल के ऊपर। मेरे पास तीन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो अभी अक्टूबर की क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके अपने एरियाज से आ रहे हों वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनमें एक का नाम है विशाल केसरी जो इलाहाबाद से आ रहे हैं। विशाल केसरी का नंबर है 8423960910। दूसरे स्टूडेंट हैं सुरेंद्र प्रजापति, आप भी इलाहाबाद से आ रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति का नंबर है 9795242209। तीसरे फ्रेंड हैं अभय मिश्रा जो गोरखपुर और लखनऊ दोनों जगह उन्होंने लिखा है कि वहां से जो आने वाले स्टूडेंट हो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभय मिश्रा का मोबाइल नंबर है 7408001827। और मित्रों अब मैं आता हूं शेष ईमेल पर, बहुत स्टूडेंट्स के मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में से कुछ के नाम हैं, प्रेमचंद कुमार रांची से, मृदुला इलाहाबाद से, अभिनव यादव बाराबंकी से, अबुल कासिम गुवाहाटी से, अजय आनंद चंडीगढ़ से, पूजा राजपूत, जितेंद्र सिंह लखनऊ से, नचिकेता वत्स गया से, सुरेंद्र सिंह गैरसेड़ चमोली से, जगमल देवासी मुंबई से, अंकुश जम्मू से, शैलेश कलसारिया सूरत से, अनुरुद्ध सिंह चौहान भोपाल से, और गौरव धीमान चंडीगढ़ से। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।